તારીખ 27/1/1994 શ્રી સમયસર ગાથા 14 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 39
જિસમે એસા કહેતે એસા અનુભવ કરને સે હી આત્મદેવ પ્રગટ પ્રતિભાસમાન હોતા હૈ એસા અનુભવ મેને ઇસ પ્રકાર સે અનુભવ કરને સે હી આત્મદેવ પ્રગટ પ્રતિભાસમાન હોતા હૈ यहाँ प्रगट प्रतिभासमान मैंने प्रगट प्रत्यक्ष अनुभव होता है। आत्मानुभूति की शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूति यमेव किलेति बुद्ध्वा आत्मानम् आत्मनि निवेश्य सुनिष्प्रकम्प्य एकोस्तुनिच्यम अवबोध धना संतात। श्लोकार्थ है, इस प्रकार से जो आत्मा की अनुभूति है, शुद्धमय के विषयभूत जो आत्मा की अनुभूति है, त्रिकाली आत्मा की जो अनुभूति है, वही ज्ञान की अनुभूति है। और ऐसा ही आगे की गाथा कि जो बोधघात है, सूचना है, वो इस श्लोक में कहा है। इस प्रकार से जो पूर्व कथित शुद्धमय स्वरूप आत्मा की अनुभूति है, पूर्व कथित शुद्धमय स्वरूप मैंने त्रिकाली आत्मा के अवलंबन कर से जो अनुभूति होती है, ऐसा लेना क्या शुद्धने का विषय भूत जो त्रिकाली शुद्धात्मा है, उसका अवलंबन करने से जो अनुभूति होती है, उसको आत्मा की अनुभूति कहने में आता है। क्या विषय से जो अनुभव का विषय है, विषय है, उस पर से अनुभूति का नाम दिया गया है कि ये किसकी अनुभूति है। अनुभूति का विषय त्रिकाली शुद्धात्मा है तो कहेंगे कि ये आत्मा की अनुभूति। आत्मा की अनुभूति माने कि अनुभूति का विषय आत्मा है, अनुभूति का अनुभूति है। अनुभूति पर्याय में होती है, अनुभूति पर्याय में होती है। किसकी होती है कि अपने वेदन की होती है, और कहने में आती है कि आत्मा की होती है। विषय में स्पष्टता क्या है?
अपना वेदन की होती है और कहने में आत्मा की होती है,
कहने में आत्मा की आती है, क्योंकि इसका विषय आत्मा है। इसलिए अवलंबन का विषय त्रिकाली शुद्धात्मा होने से शुद्धात्मा की अनुभूति हुई ऐसा कहने में आता है। जब भी अनुभूति होती है तो अपने ज्ञान की होती है, जो ज्ञान शुद्धात्मा का अवलंबन लेता है उसको आत्मानुभूति कहते हैं और उसी को ही ज्ञानानुभूति भी कहने में आती है। क्यों? कि अनुभव तो ज्ञान का ही होता है, ज्ञान को स्वयं का अनुभव उसी का नाम ज्ञानानुभूति है, ज्ञान को अपने आप ज्ञान का अनुभव उसी को नाम ज्ञानानुभूति है और उसी का नाम आत्मानुभूति है। क्योंकि इस वक्त अवलंबन आत्मा का होता है, लक्ष्य आत्मा का होता है, आश्रय आत्मा का आत्मा ज्ञान होता है, इसीलिए उसको आत्मानुभूति भी कहने में आता है।
समय दर्शन जो वस्तु तो ज्ञाननी अनुभूति तो कथन मात्र थे क्यों आखा आत्मा नाथ प्रभु गुण बजाय विलास एक गुण मान गुण विलास प्रदु अनुभूति एक ज्ञान को कथन करने के लिए कि भक्त ज्ञान ने अनुभूति के लिए
अगर स्पष्टता करनी हो तो ऐसे कर सकते हैं। अनुभव करने का धर्म ज्ञान का है, दूसरे गुणों में तो अनुभव करने का कोई धर्म नहीं है। और ज्ञान किसका अनुभव करता है? स्वयं का करता है। ज्ञान ज्ञान का अनुभव करता है, इसलिए उसको ज्ञानानुभूति कहते हैं। लेकिन उस वक्त श्रुतन के विषय रूप त्रिकाली अपना जो परम प्रभु है उसका अवलंबन है, उसका लक्ष्य है, उसका आश्रय है, इसलिए उसको आत्मानुभूति कहने में आता है। अनुभूति का विषय कौन? शुद्धात्मा। शुद्धात्मा है वो अनुभूति का विषय है, इसलिए उसको आत्मानुभूति कहते हैं। वास्तव में वो ज्ञानानुभूति है, क्योंकि ज्ञान ज्ञान का अनुभव करता है, दूसरा कुछ नहीं करता है। ज्ञान का जो ससंवेदन, अपने में ज्ञान का जो ससंवेदन जो ज्ञानानुभूति है, उस ज्ञान के लक्ष्य में अपना प्रकाशित परम स्वरूप है, इसलिए उसको आत्मानुभूति कहते हैं। उतनी बात है। ज्ञान स्वयं वेद वेदक भाव से है, लेकिन ज्ञान का अवलंबन शुद्धात्मा है। क्या वेदन अपना है और अवलंबन त्रिकाली का है, इसलिए युगपत दोनों का अनुभव और प्रमाण रूप ज्ञान कहने में प्रमाण हो गया है। ऐसा जिसका अवलंबन है ऐसा जो त्रिकाली परमात्मा उसका वेदन नहीं, और जिस ज्ञान का स्वयं को वेदन है उसका अवलंबन नहीं। ये बात पूज्य बेन श्री के वचना मृत 376 में स्पष्ट कर दिया है। बुद्ध का प्रवचन तो स्पष्ट है ही स्पष्ट। वचना मृत स्वयं स्पष्ट है। पूर्ण गुणों से अभेद ऐसा पूर्ण आत्मद्रव्य पर दृष्टि करने से उसका ही आलिंगन से दृष्टि करने से अर्थता का कार्य होता है, उसका ही आलिंगन से पूर्णता प्रकट होती है। पूर्णता को अनुभव को अनुभव से लेकर के केवल जानते जो अखंड द्रव्य का आलिंगन, यही अखंड एक परम परिणामी भाव का आलंबन है। द्रव्य का आलंबन को, नायक स्वभाव का आलंबन को, अपना परम तत्व का आलंबन को, या परम परिणामी भाव का आलंबन को, ज्ञानी को यह आलंबन से प्रकट होने वाली औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक भाव रूप पर्यायों का, यानी व्यक्त होने वाली विभूतियों का वेदन होता है, व्यक्त पर्यायों का वेदन होता है। व्यक्त विभूतियों का तो आपको वैभव प्रकट हो गया ना आलंबन लेने से, उसका वेदन होता है, परंतु उसका आलंबन नहीं होता। वेदन होता है लेकिन उसका आलंबन नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर जोर नहीं होता, प्रगट पर्याय पर जोर नहीं है। आलंबन तो ले वो तो आश्रय कर से आधार लेकर के जोर देना पड़ता है, जोर तो सदा ही अखंड शुद्ध द्रव्य पर ही होता है। क्षायिक भाव का भी आश्रय या अवलंबन न लिया जाए, क्योंकि यह तो पर्याय है और विशेष भाव है। सामान्य द्रव्य के आश्रय से ही शुद्धि विशेष प्रकटति है, ध्रुव के अवलंबन से ही निर्मल उत्पाद होता है। इसलिए सब छोड़ करके एक शुद्धात्म द्रव्य के प्रति, यानी अखंड परम परिणामी भाव के प्रति दृष्टि कर, इसके पर ही निरंतर जोर रख, इसके तरफ ही उपयोग को झुका दे और झुके ऐसा कर बस। तो उसमें क्या स्पष्टीकरण दिया है अपने प्रवचन में कि देखिए, यहाँ जिसका आलंबन है उसका वेदन नहीं, और जिसका वेदन है उसका आलंबन नहीं। ये अनुभव वाली पर्याय का स्पष्ट चित्र है, स्पष्ट उनकी जो परिस्थिति है वो इस प्रकार की होती है। पर्याय आलंबन लेती है त्रिकाली सामान्य द्रव्य का, पर्याय वेदन करती है अपने आप का, वो अस्थि से हुआ। पर्याय आलंबन नहीं लेती है कभी अपना, और पर्याय वेदन नहीं करती है कभी त्रिकाली का, अस्थि नास्ति से गुरुदेव ने इस विषय को स्पष्ट अपने प्रवचन में कर दिया।
पर्याय पोता आलंबन नहीं लेना पड़ता, જેટલી પર્યાયો
સ્વતંત્ર પ્રકાશકપણાને લઈને બીજાનો વિષય થાય છે, જેમ કે આનંદ, આનંદનો વેદન થાય છે, સુખ તો સુખનું વેદન થાય છે એમ કહેવાય છે। વાસ્તવમાં વેદન કરવાનો ગુણ જ્ઞાન મેં હે, ઓર કિસી મેં વેદન કરને કા ગુણ સ્વતંત્ર પ્રકાશક છે ને, તો બીજા ગુણો પર સાથે આવી જાય છે,
બીજો એક ન્યાય
બીજા ગુણો નું
વેદન થયું
કે બીજા ગુણોનું પરિણામ જ્ઞાનમાં પ્રતિબિંબિત થઈ જાય છે. જેમ પેલા રાગ પ્રતિબિંબિત થતો હતો, આકુલતા પ્રતિબિંબિત થતી હતી, એમ વિતરાગતા પ્રતિબિંબિત થાય છે અને નિરાકુરતા પણ પ્રતિબિંબિત થાય છે. અને એવું જ્ઞાનનું પોતાનું પણ રૂપ છે. એટલે બધું અભેદમાં એકાકાર થાય છે. આ તો સમજવા માટે ભિન્ન 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 કહેવાય છે. શુદ્ધ ને કે વિષયભૂત જો આત્મા કે અનુભૂતિ હૈ વહી જ્ઞાન કે અનુભૂતિ હૈ. જ્ઞાન કી અનુભૂતિ હૈ વો તો વાસ્તવ મેં જ્ઞાન કી અનુભૂતિ હૈ. અનુભવ કરને કા જ્ઞાન કા સ્વભાવ હૈ ઓર સ્વયં કા અનુભવ ભી વો કરતા હૈ વેદી વેદક ભાવ સે. ज्ञान के वेदन करने वाली ज्ञान की पर्याय और वेदन में आने वाली भी स्वयं, इसलिए वेद वेदक भाव तो ज्ञान की पर्याय में है. एक ही पर्याय वेद्य है, एक ही पर्याय वेदक है. लेकिन शास्त्र में ज्ञानानुभूति को बहुभाग आत्मानुभूति बोला गया है और हमारा प्रयोजन भी त्रिकाली आत्मा प्रयोजन भूत तत्व तो हमारा शुद्ध आत्मा है. क्योंकि वही हमारा अवलंबन का विषय है, वो आश्रय का विषय है, इसलिए उसका आश्रय होने से वो आश्रय विषयभूत पदार्थ के कारण से अनुभूति को नाम दिया आत्मा की अनुभूति. तो आचार्य महाराज स्पष्टता करते हैं कलश में कि आत्मानुभूति इति शुद्ध नयात्मिका, जो शुद्ध नय से आत्मा की जो अनुभूति होती है या ज्ञानानुभूति, उसको ज्ञानानुभूति वास्तव में ज्ञानानुभूति है ऐसा जानना, ऐसा जान करके ऐसा कहते हैं. जो शुद्ध नय स्वरूप आत्मा की अनुभूति है, मैंने आत्मा के अवलंबन से होने वाली जो अनुभूति है वही वास्तव में ज्ञान की अनुभूति है. वो आत्मा की अनुभूति नहीं है, वो ज्ञान की अनुभूति है. आत्मा की अनुभूति तो आश्रयभूत तत्व के हिसाब से बोलने में आता है, क्योंकि आश्रय करने से जिसका आश्रय ज्ञान करता है तदाकार परिणमित हो जाता है. ज्ञान कैसा हो जाता है? तद्रूप हो जाता है. तो आत्मा का आश्रय करने से ज्ञान आत्माकार भाव में आ गया, आत्मा रूप परिणमित करने लगा, उसको आत्मान की अनुभूति है. ऐसा नहीं
है यानी क्या आप समझ लेते हैं और वेद पर्याय ज्ञान होते पर्याय से भूली जाए छे और द्रव तरीके ने ये समय में एक वक्त ये समय को हूं कि पोते द्रव हो जाए छे भले पर्याय छे और आपको आत्मान
वो आत्माकार हो जाता है ज्ञान ऐसा कहो, या पर्यायाकार पुनः अपना भूल जाता है ऐसा कहो, द्रव्याकार हो जाता है ज्ञान ऐसा कहो, या पर्यायाकार अपने को भूल जाता है ऐसा कहो, एक ही बात है. यहाँ जो जो संकेत है, यहाँ जो मैं इस विषय को खोलने की जरूरत क्या है? संकेत नहीं है, हेतु है. यहाँ मात्र संकेत नहीं है, यहाँ तो हेतु है कि अनुभव कैसे करना है.
अनुभव कैसा करना?
अनुभव करने की विधि क्या है? अनुभव करने की कार्य पद्धति क्या है? वो हेतु से ये बात कही है. इसके पीछे जो हेतु है वो इस प्रकार का है. ऐसी बात यहाँ क्यों छेड़ी है? इस बात को छेड़ने के पीछे क्या आशय है आचार्य महाराज का? अनुभव की विधि बतानी है.
बराबर.
कि लक्ष्य आत्मा पे रखना और अनुभव स्वयं का होना. ज्ञान का लक्ष्य आत्मा पे रखना पर ज्ञान को अनुभव से उनका करना,
यानी आत्मा से आत्मा को देखना।
ठीक बात
દારૂભાઈની ભાષામાં દેહ રૂપમાં જ્ઞાન થઈ ગયો, દારૂભાઈની ભાષામાં દેહ રૂપમાં જ્ઞાન થઈ ગયો, દેહ રૂપનો જ્ઞાન
ભાષા છે અપને તો કોઈ તોડફોડ નહીં કરવી, સમજે? આત્મા છે આત્મા કા અનુભવ કહો તો કોઈ આપત્તિ નહીં, પર્યાય છે દ્રવ કા અનુભવ કહો તો ભી કોઈ આપત્તિ નહીં, વાસ્તવ મેં પર્યાય છે પર્યાય કા અનુભવ હૈ, ત્રિકાલી સામાન્ય જો પ્રત્યુ જ્ઞાન કા વિષય હોતા વહી દ્રવ્ય પ્રત્યુ કા વો દ્રવ્ય વો કા વો દ્રવ્ય એસા જો જ્ઞાન હૈ પ્રત્યુ જ્ઞાન હૈ જો સામાન્ય ત્રિકાલી કા વિષય કરતા હૈ એસા પ્રત્યુ જ્ઞાન કા વિષય દ્રવ્ય સામાન્ય उससे नहीं आलिंगित ऐसे शुद्ध पर्याय वही आत्मा है। यह प्रवचन सार का 172 गाथे का 20 नंबर का बोला है क्या नहीं? हरिंद्रह का वही आलिंगित
नहीं आलिंगित,
फिर वे आलम्बन लिया ऐसा कहो, आश्रय लिया ऐसा कहो, आलिंगन लहर लिया ऐसा कहो, कुछ भी कहो, सोच समझ के कहो। ये कहने में हमको कोई तकलीफ नहीं होती है, सुनने में तकलीफ नहीं होती है, लेकिन ज्ञान सही रखना। ये त्रिकाल त्रिकाली के साथ अभेद होती है पर्याय, ऐसा बोलने में आता है। तो क्या पर्याय पर्याय मिटकर द्रव्य हो जाती है क्या? ऐसा कभी होता नहीं, पर्याय पर्याय रहती है, द्रव्य तो अभेद होना मतलब क्या कि मैं ऐसा हूं जिसका आश्रय लेता है वो त्रिकाली सामान्य स्वरूप में हूं, ऐसा पर्याय में अभेद भाव होता है। क्या अभेद भाव पर्याय में होता है? अभेद भाव पर्याय क्या करती है? फिर भी भाव में भावात्मक अभेदता होती है, फिजिकली अभेदता होती नहीं है, पर्याय पर्याय ही रहती है, पर्याय द्रव्य नहीं होती है। ठीक, ये बात ज्ञान में रखने की बात है, भाषा कुछ भी आएगी ज्ञान में तो स्पष्ट रखना पड़ेगा।
इसमें तो संतुलन आ गया,
बिल्कुल ज्ञान सही रहेगा तो संतुलन आ जाएगा, ज्ञान गलत हो जाएगा तो संतुलन नहीं रहेगा, असंतुलित अवस्था हो जाएगी, ऐसा बनेगा।
दोनों अपना आइडेंटिटी कायम रखते काम होता है,
वो अपना अपना स्वरूप को कोई तत्व गवा दे खो दे तो वस्तु का नाश हो जाएगा, पर्याय में पर्याय को छूट जाएगा तो पर्याय का नाश हो जाएगा,
वो मंजूर नहीं,
वो बनता नहीं, बन सकता अपने ना अस्तित्व का कौन नाश करेगा। इस प्रकार से जो पूर्व कथित त्रिकाली शुद्धमय स्वरूप आत्मा की अनुभूति है वही वास्तव में ज्ञान की अनुभूति है। क्या लिखा? इयम एव किल ज्ञान अनुभूति इति बुद्धवा, ऐसा जान करके तथा आत्मनि आत्मनम सुनिष्प्रकम्पम निविश, आत्मा में आत्मा को निश्चल स्थाप करके जो त्रिकाली स्वरूप है उसमें वही आत्मा है, उस आत्मा में इस आत्मा को ही निश्चल रूप से स्थाप देना कि मैं ऐसा ही हूं, ऐसे आत्मा में आत्मा को निश्चल स्थाप करके कैसा अनुभव करना कि सदा सर्व सर्व बाजू सदा चारों ओर एक मैंने अभेद ज्ञान घन आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करना। हरिया का भी विकल्प उठाना नहीं, निंदन का भी विकल्प उठाना नहीं, आनंद का भी विकल्प उठाना नहीं, दूसरे गुण का परिणाम का भी विकल्प उठाना नहीं। थोड़ा एक विषय चलता है, ध्यान देना है कि ये जो त्रिकाली आत्मा, त्रिकाली आत्मा, ध्रुव आत्मा कहते हैं, वो अचेतन आत्मा नहीं है क्या?
चेतन आत्मा नहीं
है, उस पर थोड़ा ध्यान देना है। ये सचेतन आत्मा है, क्या है?
सचेतन,
वो सचेतन है, उसमें अनंत सामर्थ्य भरा है, और वो सामर्थ्य का स्वरूप ऐसा है कि इसलिए उसको जीवंत स्वामी कहने में आता है। श्री गुरु का ऐसा फरमान कि हो भव्य, तो अपने जीवंत स्वामी को देखो रे, देखो देखो अपने जीवंत स्वामी को, यही सर्वस्व है, यही अपना स्वरूप का सर्वस्व है। तो बात कल अपन जो पढ़ते थे कि गिलास, उसमें एक बात आई थी शक्ति कि कोई भी संसार में परिभ्रमण करने वाला जीव है, अनादि से परिभ्रमण करके दुखी 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 हो रहा है, ऐसे जीव को कभी भी अपने अंतर में से एक भावना होती है कि मुझे मेरा आत्म कल्याण ही चाहिए, मुझे कल्याण स्वरूप मेरा आत्मा ही चाहिए, तो स्वयं कल्याणमय है और जगत मेरे लिए निसार है। जगत में कोई सार नहीं है, निसार है, क्योंकि पंच परावर्तन में चारों गति में सभी क्षेत्र में सभी पर्याय में सभी प्रकार का आयु से लेकर के हमारा जन्म हो चुका है। एक क्षेत्र, एक काल, एक भाव, एक द्रव्य कोई बाकी
नहीं,
नहीं रहा, एक भाव भी बाकी नहीं रहा, सभी भाव हो गया, जो मिथ्या दृष्टि को होता है, दृष्टि वाला भाव भी हुआ है, तो सर्वास्थिति का होता है, एक अवतार इंद्रों का होता है, वो नहीं हुआ है, उस भाव का फल भी नहीं आया है, ऐसा भाव नहीं हुआ समय दृष्टि में, तो उस प्रकार का भाव और भाव भी नहीं हुआ है, तो भाव का फल भाव है। मिथ्या दृष्टि को जितने परिणाम होते हैं पुण्य पाप के, वो सभी प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम हो चुके हैं, सभी के फल भी हम भोग चुके हैं, अब पूरा जगत निसार है हमारे लिए, और एक हमारा आत्म कल्याण ही हमें चाहिए। ऐसे अंतर में से, आत्मा में से आत्मा की भावना होती है, चैतन्य में से चैतन्य स्वरूप की भावना होती है, तो वो भावना निष्फल हुए बिना, सफल निष्फल कभी जाते
नहीं, नहीं
सफल हुए बिना नहीं रहते। क्यों? अब हमारा प्रश्न है कि ऐसा क्यों कि अंदर में जो अनंत सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य जो अनंत सामर्थ्य है, इस भावना आते ही वो सामर्थ्य है उसका अंदर से आधार मिलता है, बल मिलता है, जोर मिलता है, इसलिए वो अनंत सामर्थ्य को कौन फेल कर सकता है, अनंत सामर्थ्य को कौन निष्फल बना सकता है। इसी का नाम शक्ति को देखना है, उसी का नाम शक्ति का सामर्थ्य का सुखा है, सामर्थ्य को सामर्थ्य के रूप में देखना चाहिए। सामर्थ्य को सामर्थ्य के रूप में देखने से परिणमन में एक नया जीवन का संचार होने लगता है, वही आत्मिक जीवन है, वही सुख शांति का जीवन है, वो शांत निरामय जीवन है, उसी की प्राप्ति इस प्रकार से। तो इसीलिए कहा कि भले ज्ञान की अनुभूति हो ज्ञान में, फिर भी आत्मा में आत्मा को स्थापित किया है। क्या श्रद्धा ज्ञान में आत्मा को आत्मा में स्थापित कर दिया है, तो यही मेरा स्वरूप है और मैं श्रद्धा ज्ञान से उसको स्थापित करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। तो क्या होता है हालत में कि मैं चारों से एक ज्ञान घन आत्मा ही हूँ और कुछ मैं नहीं हूँ, मैं एक समय के पर्याय हूँ और विस्मृत हो जाता है। पर्याय अपने आप को वेदन करती हुई भी भूलती है, समझो समझ लो, क्योंकि लक्ष्य नहीं है पर्याय पर। ज्ञान में सब कुछ है, त्रय है, वो सिर्फ आलम्बन का विषय है। यहाँ पर ज्ञान सम्यक होता है माने अपना स्वरूप, इसलिए स्वरूप के अभिमुख हुआ उसको आत्मानुभूति कहो और वही सम्यक ज्ञान है ऐसा कहो। एक ही बात ये जो कलश था उसके भाव में उसके अर्थ में गाथा सूत्र कहते हैं, जो पसदी अपान अबद कुठम अरणम अविशेषम अबदेश संत मध्यम पसदी जीव शासनम सफल। जो पुरुष नाम आत्मा आत्मा को अबद्ध स्पष्ट अनन्य अविशेष ऐसा जो पांच प्रकार का एक आत्मा का पांच विशेषण था, उसको जो देखता है अभिमुख होकर के देखता है, उसको समस्त जीव शासन को देखता है, वो समस्त जीव शासन को देखता है कि जो जीव शासन बाह्य रूप से द्रवीभूत है और अभ्यंतर रूप से ज्ञान रूप भावश्रुत ज्ञान वाला है। ये गाथा सारे संसार में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एक अनुभव की कार्य पद्धति और अनुभव की बाह्याभ्यंतर महिमा बताई है। एक गाथा में तीन बात है, जैसे ऐसा जिसको अनुभव हुआ उसको अंतरंग में तो भाव सूत्र कहने में आता है, ज्ञान रूप भाव स्रोत, स्वसंवेदन ज्ञान रूप भाव स्रोत उसको कहने में आता है। एक बात बाह्य में उसी को ही द्रव स्रोत कहने में आता है, द्रव स्रोत और भाव स्रोत। बाह्य में द्रव स्रोत कहते हैं, अंतरंग में भाव स्रोत कहते हैं। और इसकी महिमा कितनी कि समस्त जीव शासन में समाविष्ट हो गया, व्रत नियम संयम तप भक्ति जप सब इसमें समाविष्ट हो गया, कोई चीज बाकी नहीं रही, समस्त जीव शासन कहते हैं उसको। लोग क्या कहते हैं, मंदिर बनाया तो जिन शासन की प्रवृत्ति होगी, गजरक्ष निकाला तो जिन शासन की प्रवृत्ति हो गई, क्या पंचकला में प्रतिष्ठा किया तो जिन शासन की वृद्धि होगी, स्थिति में जिज्ञासक क्या रहता है। ज्ञानियों की भावश्रुत रूप पर्याय में जिन शासन है पूरा का पूरा, जहां ज्ञानी है वहां जिन शासन है, जहां वहां ज्ञानी नहीं है वहां जिन शासन
नहीं है।
क्योंकि ज्ञानी की आज्ञा से जो होता है, ज्ञानी की उपस्थिति में या ज्ञानी की आज्ञा से जो होता है उसको जिन शासन। लेकिन जहां ज्ञानी की आज्ञा नहीं और ज्ञानी का ज्ञानी के प्रति ज्ञानी प्रकार का अनुमोदन नहीं, सद्भाव नहीं, वहां जिन शासन
नहीं।
महत्वपूर्ण समस्त जिन शासन ज्ञानी में आ गया। ज्ञानी को छोड़ करके जिन शासन को तुमको फोकस करना हो जिन शासन में, तो जिन शासन होता
नहीं है
ऐसी बात क्या है। लिखा तो एकावन पत्र में है, आप एकावन में पढ़ा था ना, ज्ञानी और ज्ञानी के आश्रय ही कर सकता है। बार में भूल जाता था, अभी तो आज सब थोड़ा चर्चा हुआ ना इसलिए दिमाग में नहीं आया। मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति दोनों की घटित होती है। मोक्ष मार्ग को जिन शासन एक आत्मज्ञानी की और एक आत्मज्ञानी के आश्रयवाद की, ऐसा श्री जिन ने कहा है। दूसरे की मार्ग प्रवृत्ति नहीं हो सकती है क्या? कम से कम मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति दोनों की घटित होती है, एक आत्मज्ञानी की और एक आत्मज्ञानी का आश्रयवान की। ज्ञानी से जो सत्ता है, ज्ञानी की आज्ञा से जो सत्ता है, दूसरे का हो सकता
ज्ञानी ज्ञानी ने आश्रय परिणाम
ज्ञानी का आश्रय जिसने लिया हो
परिणाम जो
ज्ञानी की आज्ञा शिरोधार्य करने वाला हो उसको मोक्ष मार्ग का प्रवृत्ति होगी। अंतर में और बाहर में
ये नहीं बैठू ज्ञानी तो अंतर से भरा हुआ ज्ञान से ज्ञान से गया એને મુમુક્ષ જેમને એમને ચરણે બેસીને એ સાંભળ્યા પછી પોતે તાત્કાલિક એ પ્રમાણે પ્રાણી મને જ્ઞાની થયો એવા અન્ય અનુસાર એમ આવી કોઈ પ્રકારની અજ્ઞાની થયું છે બેઠી ચાલે
ભલે અજ્ઞાની હોય પણ જ્ઞાની કા આજ્ઞા છે ચલતા હે
ને તે જ્ઞાની કેમ થઈ ગયો
જ્ઞાની નહીં હે લેકિન પ્રવૃત્તિ જો કરતી કરતા હે તો જ્ઞાની છે આ જ્ઞાની કી આજ્ઞા છે કરતા હે તો માન્ય હે મોક્ષ માર્ગ મેં ઉસકો માન્ય કિયા હે પ્રવૃત્તિ કરને હે कि तुम कर सकते हो क्या तुम
कर सकते
हो ज्ञानी की आज्ञा से करता है।
ज्ञानी की आज्ञा से करता है
हाँ, उसके आश्रय में रह करके करता
है। ज्ञानी का आशय है वो समझ के वो करता है,
वो तो उसकी आज्ञा उठाने वाला है इसलिए ज्ञानी की आज्ञा अनुसार करो ठीक है। मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति बेनी घटे एक आत्मज्ञानी ने एक आत्मज्ञानी ना आश्रयवान में एम श्री जी ने कही।
मोक्ष मार्ग द्रव्य मोक्ष मार्ग भाव मोक्ष मार्ग
द्रव्य ने भाव भी नहीं देवा भाव हो क्या द्रव्य साचो ભાવ નો હોય ત્યાં દ્રવ સાચું
તો પછી જે મુમુક્ષુ પણ જ્ઞાની ને આશ્રય લઈને જ્ઞાની ને ચરણ વચ્ચે ને એ જ્ઞાની ને પ્રમાણે પડી લીધી હોય આત્માનુભૂતિ કરી લીધી એ એને મળી જાય એમ મને
પણ જ્ઞાની ના આશ્રય જ્ઞાની ની આજ્ઞા અનુસાર પ્રવૃત્તિ કરે તો તે માન્ય કરે
જ્ઞાની કા શિષ્ય હું જાણો
હા ज्ञानी क्या आज्ञा से चलता है तो उसकी प्रवृत्ति को मान्य करना। जहां ज्ञानी का विरोध होता हो और वो प्रवृत्ति करता है तो वो उसमें कहीं ना कहीं कोई न कोई सिद्धांत विरुद्ध बात हो जाएगी, कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाएगी और उसको कृतकारी तनुबद्धता से उस परिणाम का नुकसान भी जिसका जैसा परिणाम हो उसका हो ही जाएगा।
ज्ञानी का आज्ञा ऐसा रहेगा, ज्ञानी का आज्ञा जो है तो उसका जो आज्ञा है उसका जो मर्म है उसका जो भाव है उस उसकी मार्फत चलता है, ऐसा लेना है।
जो ज्ञानी का आश्रय करता है वो शिक्षण से चलता है, वो ज्ञानी के हृदय को जानता है, उसका अभिप्राय को जानता है
बराबर,
और उसी के अनुकरण अनुसरण करता है
उसको लेने में,
उसी को ज्ञानी का आश्रय
मानते
हैं मैं अतः अनुसरण करता हूँ। वो कहां से निकलता है कि पंद्रहवीं गाथा में से ये निकलता है कि स्वानुभव मंडित हो, स्वानुभव विभूषित हो, ऐसा आत्मा ही समस्त दिन शासन है।
दिन शासन वो है बाकी
समस्त
समस्त दिन शासन
ऐसा नहीं कहा, समस्त जीव शासन संबंध उनको लाचार होता
है,
जीव शासन समस्त जीव शासन महिमा स्वानुभव की आचार्य करते हैं,
बाकी तो कोई चीज ही नहीं है, वो अनुभव ही चीज है,
ऐसे महान आचार्य भी अनुभव की उतनी महिमा कर रहा
है। जागरूकता आ जाती है,
जागरूकता आ जाती है, सभी प्रकार का विवेक संवैज्ञानिक को ही होता है, अंतर बाह्य दृढ़ स्वरूप और भाव स्वरूप बाह्याभ्यंतर विवेक ज्ञान का है, जो आत्मा का अनुभव करता है उसको होता है। या आत्मा का अनुभव किसने किया कि जिसके ज्ञान में महान विवेक प्रकट हुआ है उसको आत्मा का अनुभव। संवेज्ञान हुआ, संवेज्ञान का दूसरा नाम क्या है कि महाविवेक, क्या थी
महाविवेक,
क्यों उसको महाविवेक किया कि उसके पहले जगत में सभी पदार्थ का ज्ञान वो करता था, पंच परावर्तन में कौन सा पदार्थ को नहीं जाना नहीं होगा ठीक, अब सभी को छोड़ करके एक आत्मा के आश्रय में वो आया है, इसका नाम क्या महाविवेक प्रकट हुआ, तब तो वो पर मेरे परमात्मा के आगे दूसरा किसी का कोई वही है
नहीं
है, ये महाविवेक हुआ,
ये महाविवेक मुमुक्षु ने थे एना ज्ञानी ना आश्रय बैठो छे तेने महाविवेक थे एना अनुभूति थी इतने मोक्ष मार्ग पे नहीं थी एना आश्रय हम ने कैसे
मारा वो अभी नहीं मोक्ष मार्ग में आया हो तो आ जाएगा वो, क्योंकि प्रथम संकेत तो हो गया ना ज्ञानी के आश्रय से, प्रथम संकेत हो गया तो मोक्ष मार्ग में नहीं आया होगा आज तो कल आ जाएगा। क्या कृपा जो लिखते हैं एक दफे ज्ञानी की पहचान हुई तो निर्वाण पद का अधिकारी हो गया, अनंत काल में अनंत बार ज्ञानी मिले हैं लेकिन पहचान एक बार भी नहीं हुई, एक बार पहचान हो जाए यानी एक बार सच्ची मुमुक्षुता हो जाए, मोक्ष का ध्येय हो जाए उसका निर्वाण पद मंजूर हो गया निश्चित हो गया, यह बात है। जो पुरुष आत्मा को देखता है वही सर्व जिन शासन को देखता है, वही जिन शासन बाहर में द्रवसूत वाला है। मैंने 12 अंग उसमें आ गया, 11 चौदह पूर्व 12 अंग उसमें आ गया और अंतर में भी स्वानुभूति और शुद्ध ज्ञान रूप है। पाव शुद्ध पूर्व पानी निकलती है उसको द्रवसूत कहते हैं, उसको 12 अंग कहते हैं। 12 अंग मैंने 11 अंग चौदह पूर्व उसको 12 अंग कहते हैं। द्वादशांग जो भगवान की वाणी सुन करके गंथर देव रचना करते हैं द्रवसूत की, तो एक स्वानुभव हुआ उसको बाह्य द्रवसूत समस्त आ गया, समस्त दिन शासन पे उसमें सब बात आ गई। कौन सी बात बाकी रही? शास्त्र बात तो कोई बात है नहीं, जो भी विधि विधान चलता है वो तो 12 अंक के अंदर में सबका समावेश हो जाता है। इसलिए ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो 12 अंक में ना आई हो, ऐसी कोई चीज है ही नहीं, ऐसी बात है। एक गाथा में कितना भाव भरा है और आचार्य महाराज ऊपर के गोस्थान में बैठकर स्वानुभव कर महिमा कितना करता है वो एक देख देता है। जो प्रथम समय दृष्टि हुआ उसको समस्त जिन शासन बोल दिया, कितनी महिमा की आप द्रव जिन शासन बाद में जो भी होते हैं, जितने भी प्रभावना धर्म की होती है, जैन धर्म की प्रभावना होती है, उसको द्रव्य जिन शासन कहते हैं। और सम्यक दृष्टि के स्वानुभव को भाव जिन शासन कहने में आता है। जहाँ भाव है वहां द्रव्य है, भाव नहीं है वहां द्रव्य नहीं है। कभी कोई कहते कभी बहुत वो लोग बहुत प्रभावना करते हैं, भाव जिन शासन है कहीं तो द्रव जिन शासन का अंतर लागू पड़ता है। जब भाव जिन शासन नहीं है वह द्रव जिन शासन ऐसी बात है। कहीं ना कहीं विख्यात को पोषण प्रतिपादन आ जाएगा, विख्यात को पोषण कोई ना कोई सिद्धांत है वो घुस जाएगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ी
निश्चित रूप से गड़बड़
हो जाएगी बिना
उसका स्वभाव ही ऐसा
है, नियम बताए। टीका यहाँ एक नौ नोट लिखा है, कलश 140 पृष्ठ संख्या 325 थोड़ा देख लें।
हाँ
अभी टीका का विषय थोड़ा लंबा चौड़ा है, कल करके जितना होगा उतना लेंगे, ऐसा तो 5-6 घंटा की है,
5-6 घंटे
ऐसा तो पूरा होने में तो 5-6 घंटा लग जाए। ऐसे एक नायक भाव से भरा हुआ मांसवाद को लेता हुआ इस प्रकार से ज्ञान में ही एकाग्र होने वाला दूसरा स्वाद को नहीं आता है, इसलिए द्वंद्व में स्वाद को लेने को असमर्थ अर्थात वर्णादिक रागादिक तथा क्षायोक्षण ज्ञान का भेदों का स्वाद लेने को असमर्थ आत्मा के अनुभव का स्वाद का प्रभाव को अधीन हुआ होने से निज वस्तु वृत्ति आत्मा के शुद्ध परिणति को जानता आस्वादता हुआ अर्थात आत्मा का अद्वितीय स्वाद का अनुभव में से बाहर नहीं आता हुआ यह आत्मा ज्ञान के विशेषों का उदय को गौण करता हुआ सामान्य मात्र ज्ञान का अनुभव करता हुआ सामान्य मात्र ज्ञान का अभ्यास करता हुआ सभी ज्ञान को सकल ज्ञान को एक पणे में लाता है यानी एक रूपता को प्राप्त करता है सामान्य ज्ञान का विषय सकलम ज्ञानम सामान्य कलयम के लिए निर्जराधिकार में अनुभव का विषय बहुत आया है ज्ञान का स्वरूप लिया है इसे सामान्य मात्र ज्ञान का अभ्यास करता हुआ सकल ज्ञान को एक रूपता को प्राप्त करता है सकल ज्ञान को एक पड़ा में ले आता है पारात मिली ज्ञान के विशेष ज्ञान का निमित्त से होता है विशेष ज्ञान जबकि ज्ञान सामान्य का स्वाद लेने में आता है तो ज्ञान का सर्वभेद गौण हो जाता है ये ज्ञान ही ज्ञेय रूप हो जाता है जैसे जी ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि जब ज्ञान सामान्य का स्वाद लेने में आता है तो ज्ञान का सर्वभेद गौण होकर के एक ज्ञान एकाकार ज्ञान का ही उद्भव जैसे श्री पंद्रह गाथा का विषय उसको तो हमने पढ़ा था ध्यान 262 को प्रवचन रत्ना पर पेज 262 उसने स्पष्ट किया है पंद्रह गाथा का भाव को वहां एकदम स्पष्ट कर दिया है अनुभव की विधि तो ऐसी ही है
तो ये अनुभव हर पल आता रहता है कि ऐसे स्टेटस में आता है या हरदम साथ में रहता है
परंतु रूप हरदम साथ में रहता है और शुद्धोपयोग कभी कभी आता है दोनों को अनुभूति कहने में आता है परिणति को भी अनुभूति कहने में आता है और शुद्धोपयोग होता है उसको भी
अनुभूति
परिणति मैंने दत्त ज्ञान की परिणति परिणति का विषय नहीं चला बहुत जिसका रस हो जाए उसकी परिणति बन जाती है जैसा मनुष्य है उसका स्मरण नहीं करना पड़ता है हमारे परिणति मुड़ी है कि हम मनुष्य है हमको दूसरा विकल्प आएगा ही नहीं कि हम सीरियस है या देव है या नारकी है चार गति में से दो गति में है उसकी परिणति बनती है तो उसमें से किसका विकल्प मिल जाएगा और तीन का तो कोई विकल्प उठेगा नहीं अपनी गति का भी निर्विकल्प परिणति चलती है भाव चलता ही है ये भाव चालू ही रहता है ऐसा होता है
और जब
जब
ज्यादा
जोर
से आती है तब
स्पेशल प्रसन्न होता है तो शुद्ध होता है आविर्भाव होने से
शुद्ध होता है परम पूज्य श्री सानुगुरु श्री